SBS हिंदी पर मैं हूं आपके साथ अनीता बरार। कहना सही ही होगा कि बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि ओपी नैयर ने हिंदी फिल्म संगीत में कदम रखा, क्योंकि कल्पना कीजिए कि ओपी नैयर के संगीत में रचे वो ढेर सारे गीत अगर ना बने होते तो कितना कुछ अनोखा, मनमोहक हमसे छूट जाता। भारतीय फिल्म संसार में एक से एक बढ़कर संगीतकार हुए हैं। हर संगीतकार का अपना एक अलग मुकाम था। संगीतकारों के नाम से ही फिल्में बिक जाती थीं, लेकिन एक आम इंसान के साथ जुड़े संगीत के लिए एक ही नाम आता रहा है और वो है ओंकार प्रसाद नैयर, जिन्होंने तरोताजा कर देने वाली धुने दी, लोक संगीत को जैसे मुख्य धारा का संगीत बनाया। उनके संगीत ने एक और रफी साहब को शंकर जयकिशन या नौशाद साहब से अलग हटकर पेश किया, तो वहीं जोशीले संगीत से शमी कपूर को रातों रात स्टार बना दिया फिल्म तुम सा नहीं देखा से। ये फिल्म थी नासिर हुसैन की पहली फिल्म। शमी कपूर कर रहे थे पिछले 4 सालों से संघर्ष और अमिता यानी हीरोइन थी एक नया चेहरा। कुल मिलाकर नासिर साहब के लिए अगर इस फिल्म के लिए कोई नाम था तो वो था ओपी नैयर का। नैयर साहब के संगीत ने किया वो जादू कि शम्मी कपूर जो अपने अंदर के डांसर को कहीं रोक के बैठे हुए थे, बस वो खुले मुक्त रूप से आ गया बाहर और फिल्म के प्रीमियर पर पर्दे पर आए शम्मी कपूर जब गाने के साथ, तब से ही पता चल गया कि बस छा गए हैं वो फिल्मी दुनिया पर। ओपी नैयर का संगीत पूर्व और पश्चिम की सीमाओं से परे एक तीसरे किस्म का संगीत था, जहां एक ओर थे श्रृंगार प्रधान धुने तो दूसरी ओर थे दिल को छू जाने वाले दर्द में डूबे नगमे। ये ओपी नैयर का संगीत था जिसने फिल्म संगीत में सारंगी के साज को लाया। इससे पहले सारंगी सिर्फ महफिलों में ही सुनी जाती थी। ओपी नैयर का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1926 के दिन लाहौर में। संगीत से उनका लगाव कुछ इस तरह का था कि कॉलेज को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। बचपन में ही बिना किसी शिक्षा के वो हारमोनियम बजाते रहे और 11 साल की उम्र में ही वो दूसरे लोगों को संगीत की शिक्षा देने लग गए। इसी समय वो ऑल इंडिया रेडियो पर बतौर गायक भी रहे। ओपी नैयर ने एक बार राजीव विजयकर को एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि बचपन में उन्हें घर में खोटा सिक्का बताया जाता था, क्योंकि उनका मन पढ़ाई में नहीं था और उनके घर में सभी पढ़े लिखे थे, कोई डॉक्टर था तो कोई जज। उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि संगीत के लिए उनके घर में कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। नैयर साहब 17 साल के थे जब सहगल साहब की आवाज को ध्यान में रखकर उन्होंने एक गीत लिखा, उसकी धुन बनाई। लाहौर में उनके एक दोस्त एसएन भाटिया ने नैयर साहब को सीएच आत्मा से मिलाया, जो सहगल साहब की तरह ही गाते थे, तो वो गाना सीएच आत्मा की आवाज में एचएमवी ने रीगल लेबल के लिए रिकॉर्ड किया। उन दिनों एचएमवी के 3 लेबल हुआ करते थे, हिज मास्टर्स वॉइस, कोलंबिया रिकॉर्ड्स और सबसे कम बिकने वाला लेबल रीगल। तो इस गाने के लिए एचएमबी ने उन्हें 40 रुपए दिए और जानते हैं वो गाना कौन सा था? और इसके बाद भाटिया ने नैयर साहब और सीएच आत्मा को एक बड़े प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली से मिलाया। उन्होंने बाद में सीएच आत्मा को तो फिल्म नगीना के लिए साइन किया, लेकिन ओपी नैयर को वो जैसे भूल ही गए। फिर इस फिल्म के प्रीमियर पर एसएन भाटिया ने पंचोली को याद दिलाया, तब ओपी नैयर को अमृतसर से मुंबई बुलाया गया और उन्हें पहली फिल्म मिली आसमान और उन्हें 600 रुपए महीने पर साइन किया गया। आसमान बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। उनकी अगली फिल्में क्षमा छम छम और गुरदत्त की बाज दोनों ही फिल्में बिल्कुल नहीं चली। ओपी साहब निराश हो गए और उन्होंने वापस अमृतसर जाने का सोच लिया। अब इस समय तक ओपी नैयर की शादी भी हो चुकी थी और उनके पास पैसे की भी कमी थी। गुरदत्त के पास फिल्म बाज के लिए उनके 3,000 रुपए बकाया थे। वो पैसे लेने वहां पहुंचे तो गुरदत्त ने उन्हें पैसे देने से इनकार किया, क्योंकि गुरदत्त के पास भी तो पैसे की तंगी थी। अब इससे पहले कि कोई और हल निकलता, करतार स्टूडियो के कपूर ने नैयर साहब को 100 रुपए दिए ताकि वो घर के लिए कुछ सामान ला सके। साथ ही वो गुरदत्त के पास भी गए। गुरदत्त से उन्होंने ओपी नैयर के बारे में पूछा तो गुरदत्त ने कहा कि वो होशियार तो हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हैं। के कपूर ने गुरदत्त से कहा कि वो उनकी फिल्म न सिर्फ फाइनेंस करेंगे बल्कि मुंबई, दिल्ली और यूपी में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे अगर गुरदत्त ओपी नैयर को संगीतकार के रूप में रखें। गुरदत्त मान गए और उन्होंने उसी समय ओपी नैयर को 2,000 रुपए दिए। 1,000 तो था नई फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट और 1,000 रुपए पिछले बकाया 3,000 की किश्त। ओपी नैयर साहब ने बताया था कि उस पल उन्हें लगा कि वो जैसे लखपति बन गए हैं और वो फिल्म थी गुरदत्त की आर पार। आर पार हिट हुई, संगीत भी हिट हुआ और यहीं से शुरू हुआ ओपी नैयर की रोमांचक रोमानी नशीली धुनों का सफर। इसके बाद गुरदत्त की ही की मिस्टर एंड मिसेस 55 और ओपी नैयर का सिक्का जम गया और जैसे संगीत की देवी ने ही उनसे कहा कि अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ओपी नैयर वो पहले संगीतकार थे जिन्हें एक फिल्म का संगीत देने के लिए 1,00,000 रुपए मिलते थे, जो उस जमाने में तो बहुत बड़ी रकम हुआ ही करती थी। एक और जहां पर उन्होंने प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छुआ, वहीं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर वो कहीं गुमनामी में खो गए। कहते हैं कि उन्हें अंग्रेजी फिल्में देखना बहुत पसंद थी और हारमोनियम तो वो बजाते ही थे। उन्होंने फिल्म जगत से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो एक विद्रोही तरह के संगीतकार थे। आशा भोसले के साथ उनकी आसक्ति और लता मंगेशकर के बिना संगीत देना चर्चा का विषय तो रही ही, और कहते हैं कि एक समय वो भी आया जब वो मोहम्मद रफ़ी से नाराज हो गए थे, लेकिन खैर वो जो एक नाराज़गी थी वो कुछ समय तक ही रही। 28 जनवरी 2007 को 81 वर्ष की आयु में ओपी नैयर ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन पीछे छोड़ गए वो सुरीले नगमे जो आज तक हमें लुभाते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।